ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ की 19वीं महासभा में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहुंचे अमेरिका के न्यूयॉर्क। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति और पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के एजेंडों का प्रभावकारी क्रियान्वयन करने की बात पर माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड ने दिया जोर। वर्तमान सरकार देश के अर्थतंत्र के विकास और राष्ट्र निर्माण पर केन्द्रित है, संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग का कथन। और श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के लिए हो रहे हैं चुनाव। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र संघ की 19वीं महासभा में भाग लेने के लिए नेपाली प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। जेएएफके अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर प्रधानमंत्री ओली का स्वागत राष्ट्र संघ के लिए स्थायी नियोग प्रमुख लोक बहादुर थापा, अमेरिका के लिए कार्यवाहक राजदूत कुमार खरेल और स्थायी नियोग के अधिकारियों ने किया था। प्रधानमंत्री ओली आश्विन 10 गते को महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ओली का कल नेपाली संघ संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाले समारोह में सहभागी होने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ओली आज राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनिया गुटेरेस के साथ भेंटवार्ता करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि देश का संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र तक पहुंचना बहुत बड़ा क्रांतिकारी राजनीतिक परिवर्तन है। आज ललितपुर में मदन भंडारी फाउंडेशन के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में देश की तीनों तहों की सरकारों और राज्य की संरचनाओं में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता से सभी उत्साहित है और मौजूदा संविधान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति और पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के एजेंडे को प्रभावकारी तौर पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ द्वारा आज काठमांडू में आयोजित राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि संविधान निर्माण के दरमियान भिन्न मत के रूप में प्रस्तुत किए गए पार्टी के प्रस्ताव को ही आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर ईमानदारी के साथ संविधान संशोधन का प्रयास हो तो उनकी पार्टी इसके लिए तैयार रहेगी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए नेपाली कांग्रेस एमाले की संयुक्त सरकार गठित हुई है। आज लमजुंग बेसी शहर नगरपालिका वार्ड नंबर 7 में एमाले लमजुंग के तीसरे बैठक में नेकपा एमाले के उप महासचिव समेत रहे मंत्री गुरुंग ने कहा कि देश विकास के रास्ते पर आगे न बढ़ने की स्थिति को देखते हुए बड़े दलों ने सरकार का नेतृत्व लिया है। ये बताते हुए कि वर्तमान सरकार देश के अर्थतंत्र के विकास तथा राष्ट्र निर्माण में केंद्रित होकर काम कर रही है, संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि कांग्रेस एमाले नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ही संविधान संशोधन करेगी। मंत्री गुरुंग ने यह भी कहा कि खास तौर पर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता और समानुपातिक प्रणाली के विषय संविधान से हटाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि कांग्रेस एमाले के सत्ता सहकार्य से देश में सकारात्मक संदेश प्रसारित हुआ है। काभ्रे के धूलीखेल में नेपाली कांग्रेस के संस्थापक नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री बीपी कोइराला के शालिक अनावरण के दौरान सभापति देउवा ने कहा कि पार्टी को आगामी निर्वाचन में कम से कम पहली पार्टी बनाने के हिसाब से मेहनत करके जनता के पक्ष में होकर काम किया जाना चाहिए। सभापति देउवा ने दुख में रहे जनता के पक्ष में काम करने के लिए भी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को निर्देश किया। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा ने कहा कि महिलाओं के लिए अभी भी किसी क्षेत्र के नेतृत्व तह तक पहुंचने में बहुत सारी चुनौतियां हैं। कनाडा के टोरंटो में आयोजित विश्व की महिला विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए परराष्ट्र मंत्री डॉ राणा ने कहा कि भौगोलिक समानता और महिला अधिकार जैसे विषयों में नेपाल जैसे तीसरे विश्व के देशों को तो और भी अधिक समस्याएं झेलनी पड़ती है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम
भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकमको 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकमको 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउबा और रोमानिया के विदेश मन्त्री लुमिनिता ओडोबेस्कु बीच कनाडा के टोरंटो में द्विपक्षीय भेंटवार्ता हुई है। भेंटवार्ता के दौरान नेपाल रोमानिया संबंध तथा दो देशों के बीच आपसी हित के विविध विषयों पर बातचीत हुई है। भेंट में मंत्री डॉ राणा ने कहा कि नेपाल के हाइड्रो पावर लगायत विभिन्न क्षेत्रों में लगाने के लिए उन्होंने रोमानिया की सरकार और वहां के निवेशकों से आग्रह किया। मौके पर रोमानिया के विदेश मंत्री लुमिनिता ने नेपाल में जलस्रोत व्यवस्थापन पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की रुचि दिखाई। पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने कहा कि मधेश में मौजूद पानी का समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए सरकार जुटी हुई है। आज बारा की जीतपुर सिमरा उपमहानगर पालिका में आयोजित सिमरा पेयजल तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति की 22वीं वार्षिक साधारण सभा में पेयजल मंत्री यादव ने कहा कि गुणस्तरीय पानी आपूर्ति और सेवा विस्तार को उच्च प्राथमिकता में रखकर मंत्रालय नियमित अनुगमन मरम्मत संभार और सुधार के कामों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि कांग्रेस एमाले की वर्तमान राजनीतिक समीकरण लंबे समय तक नहीं जाएगी का भाष्य पैदा करके आतंक फैलाने की कोशिश करके लोकतंत्र को खत्म करने का खेल खेला जा रहा है। आज प्रेस चौतारी नेपाल दांग शाखा द्वारा गोराही में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। सभामुख देवराज घिमरे ने कहा कि सांस्कृतिक पर्व त्योहार लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। जितिया के संदर्भ में मधेसी आयोग के कार्यालय ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में सभामुख घिमरे ने ये बात कही। मौके पर आयोग के अध्यक्ष विजय दत्त ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हुआ। सन 2022 में सबसे खराब आर्थिक मंदी के बाद श्रीलंका की सरकार को जनता के गुस्सा का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, विपक्ष के नेता साजिथ प्रेमादास और वामपंथी नेता अनुराग कुमारा दिशा नायके के बीच है। सन 2022 के आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में यह पहला चुनाव है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र संघ की 19वीं महासभा में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहुंचे अमेरिका के न्यूयॉर्क। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति और पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के एजेंडों का प्रभावकारी क्रियान्वयन करने की बात पर माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड ने दिया जोर। वर्तमान सरकार देश के अर्थतंत्र के विकास और राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित है, संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग का कथन। और श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के लिए हो रहे हैं चुनाव। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।